Oh, सिद्धांत स्वरूप ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत गुड़ी वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री मायापुर नवदीप धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा देवी जमुना देवी की जय। भक्ति देवी की जय। श्रीमती तुलसी महाराज की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री गौरताय की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री राधा श्याम सुंदर ललिता देवी की जय। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय। समवेत भक्त वृंद की निताय गौर प्रमानंदे हरि हरि ओ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रेष्ठपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवञ्च श्रीरूपं शाग्रदातं सगणरघुनाथ नितं तं सजीवम् साद्वैतं सावभूतं परिणमसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते सप्तकान्तन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वंशाकल्पतरुणश्च कृपासिन्धुरेव च పతితానం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద వ్యాద్వైత గదాధర శివాచారి గౌరవభక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఓం నమః భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమః భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమః భగవతే వాసుదేవాయ.
ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ.
నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం దాసం తతో జయముదీరయే. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతే ఉత్తమ శ్లోకే భద్రిర్భవతి నైషి. మూకం కరతి వాచాలం పంగులంఘయతే గిరి యత్రోపాతమహం వందే శ్రీ గురుం దీనతారిణం శ్రీ పరమానంద మాధవం. आज यहां पर उपस्थित भक्त सज्जन वृंद एवं मात्र वृंद, हम लोग इस श्रीमद् भागवत की कथा का प्रारंभ किस प्रकार हुआ था उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार महाराज परीक्षित के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी ने इस श्रीमद् भागवत की कथा कही थी. तो जब कुरुक्षेत्र युद्ध का समाप्त हो रहा था, समाप्त प्राय हो गया था, उस समय अश्वत्थामा कुरु वंश के अंतिम संतान जिसका जन्म अभी भी नहीं हुआ, उस कौरव संतान या पांडव वंश के जो बीज उसको नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र को निक्षेप किया था. उस समय महाराज परीक्षित माता उत्तरा के गर्भ में, और माता उत्तरा ने जब देखा कि अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र उनकी ओर आ रहा है और माता उत्तरा अपने लिए या अपने जीवन के लिए उतने भयभीत नहीं थी जितने अपने संतान की सुरक्षा के लिए भयभीत थी. यही माताओं का बलिदान होता है. माताएं अपने जीवन के प्रति उतनी भयभीत नहीं होती है जितने अपने संतान के प्रति, संतान के जीवन के. तो माता उत्तरा उस समय सुरक्षा के लिए भगवान कृष्ण के पास आए, और भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र युद्ध के उपरांत महाराज युधिष्ठिर को राज सिंहासन में अभिषिक्त करते हुए करने के पश्चात वो द्वारका की ओर प्रस्थान करने के लिए उद्यत हो रहे थे। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर आरूढ़ हो चुके थे। उसी समय बहुत दूर से पाही पाही रक्षा करो कहते हुए उत्तरा दौड़ती हुई आई भगवान श्री कृष्ण के पास, और उत्तरा कह रही थी कि पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते नान्यत्वात् अभयं तस्य यत्र मृत्यु परस्परम्। तो बहुत दूर से उत्तरा देवी इस प्रकार रक्षा करो पाही पाही माम कहती हुई दौड़ती हुई आ रही है, और भगवान कृष्ण से महायोगेश्वर महायोगी के रूप में संबोधित कर रही है। भगवान कृष्ण महायोगेश्वर है, समस्त योग शक्तियों के आगार है, आलय। इस संसार में जितनी भी शक्तियां हैं, और जैसे योगीगण अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन विभिन्न अस्तित्व ढंग से करते हैं और उसको देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण ये समस्त योग शक्ति के अधीश्वर है, और केवल योगियों के नहीं, यहाँ तक कि महान आश्चर्यमय घटना को वो संगठित कर सकते हैं, इसलिए उनको महायोगेश्वर कहा गया है। इस संसार में हम देखते हैं कि योगीगण कभी कभी कुछ आश्चर्य घटना संगठित करते हैं, जिस प्रकार कभी कभी योगी लोग एक स्थान पर रहकर एक बहुत दूर से किसी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, ये एक योग शक्ति है, और इसी को देखकर कभी कभी लोग सोचते हैं कि ये भगवान, क्योंकि वो अपने हाथ की मुट्ठी से कुछ वस्तु निकाल रहे हैं। तो इसमें आश्चर्य होने की कोई बात नहीं है, ये एक प्रकार की प्राप्ति सिद्धि है। योगीगण इस प्रकार आठ प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करते हैं, जिससे वो अत्यंत लघु हो जाते हैं, इसलिए कभी कभी वो पानी के ऊपर भी चल सकते हैं योगी, और कभी कभी आकाश में भी उड़ सकते हैं, और इस प्रकार कभी कभी भारी भी हो जाते हैं, और कभी कभी किसी को सम्मोहन भी कर सकते हैं योगी। तो इस प्रकार बहुत सारी सिद्धियां हैं जो योगीगणों को प्राप्त है, किंतु ये सारी योग सिद्धियां कहाँ से प्राप्त हो रही है? भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि वही योगेश्वर सारे योग शक्तियों के ईश्वर है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण इन योगियों से परम आश्चर्य घटना को संगठित कर सकते हैं। जिस प्रकार भगवान कृष्ण जब इच्छा करते हैं यह सृष्टि संभव होती है, जब इच्छा करते हैं उनकी इच्छा मात्र से सृष्टि का प्रलय हो जाता है, तो उनसे बढ़कर और कौन बड़ा योगी हो सकता है जिनकी इच्छा मात्र से ये सारे कार्य संपादित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण एक ही समय में अनेक स्थानों पर उपस्थित रह सकते हैं। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में थे, उस समय नारद मुनि सोच रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण की 16108 रैनियां हैं और भगवान एक है, तो ये 16108 रानियों के साथ भगवान किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, कैसे करते हैं, ये कैसे संभव है कि एक व्यक्ति 16108 रानियों की व्यवस्था देखेगा? तो नारद मुनि आश्चर्यचकित होकर गए द्वारका ये देखने के लिए कि भगवान कृष्ण कैसी व्यवस्था करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने 16108 रानियों के लिए 16108 महल बनवाए थे, तो एक एक रानी एक एक महल में रहते थे। तो नारद मुनि जब गए, पहले रुक्मिणी देवी के महल में गए, तो वहां उन्होंने देखा कि भगवान वहां आसन पर बैठे हुए हैं और रुक्मिणी देवी स्वयं उनको पंखा दे रहे हैं। सेवकों से कोई काम नहीं लेते थे, भगवान की सेवा के लिए वो स्वयं अपने हाथ से करते थे। और यही वस्तुतः प्रेम का प्रतीक है कि जिसके प्रति प्रेम है उसकी सेवा स्वयं करना चाहिए। ये नहीं है कि दास दासी सेवक सेविकाओं से सेवा करके कार्य संपादित करना चाहिए। तो ये रानी आप सेवकों को भी व्यवहार कर सकती थी, किंतु स्वयं भगवान के लिए सेवा करती थी, भगवान को भोजन देती थी, भगवान को पंखा देती थी, भगवान की हर तरह की सेवा रानियां स्वयं करती थी। तो जब नारद मुनि ने देखा कि भगवान वहां पर बैठे हुए हैं आसन पर, तो फिर दूसरे महल में चले गए तो वहां देखते हैं भगवान शयन कर रहे हैं और उनकी एक रानी वहां भी उनको पंखा जल रही है। तो तीसरे महल में गए देखे तो वहां पर भगवान भोजन कर रहे हैं और चौथे महल में गए देखे तो भगवान बच्चों के साथ खेल रहे हैं। तो नारद मुनि आश्चर्य के कहीं भी जाते हैं, किसी महल में जाते हैं, वहां भगवान उपस्थित है। यही भगवान की सर्वव्यापकता है कि भगवान एक स्थान पर होते हुए भी कई स्थानों पर हो सकते हैं, हर जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में उपस्थित हो सकते हैं, हर अणु परमाणु में स्थित हो सकते हैं। यही भगवान की परम ऐश्वर्य शक्ति योग शक्ति। तो उत्तरा देवी भगवान कृष्ण से महायोगेश्वर के रूप में संबोधित कर रही है, इसलिए कर रही है कि अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र आ चुका है और उनके शरीर को दग्धीभूत कर रहा है। इस स्थिति से बताने के लिए इस संसार में और कोई नहीं है, यहां तक कि पांडव लोग भी समर्थ नहीं है। इसलिए उत्तरा देवी कह रही है भगवान से कि पाही पाही महायोगी देव देव जगत कर, कहती है कि हे प्रभु आप महायोगेश्वर हैं, आप अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन करिए, कुछ आश्चर्य कार्य करिए, नहीं तो इससे बचना मेरे लिए संभव नहीं है। तो फिर कहती है कि क्यों आप महायोगेश्वर हैं, क्योंकि आप देव देव जगत कर, आप सारे संसार के स्वामी हैं, देवताओं के भी स्वामी हैं, ब्रह्मा शिव इंद्रादि देवतागण सारे 33-35 करोड़ देवताओं के आप स्वामी, सारे संसार के स्वामी, इसलिए आपके अतिरिक्त मैं इस संसार में नान्यत्वाद अभयम सबसे यत्र मृत्यु परस्पर, आपके अतिरिक्त इस संसार में मैं कहीं भी अभय का दर्शन नहीं कर पा रहा, क्योंकि संसार में मैं जिसको देखती हूँ हर व्यक्ति संसार में भयभीत है, और किससे भयभीत है, मृत्यु से भयभीत है। हर व्यक्ति मृत्यु से डर रहा है, कोई मरना नहीं चाहता इस संसार, इसलिए मृत्यु सबके लिए भयंकर रूप में आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु सर्वहरस्ता, जो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए भगवान मृत्यु के रूप में आते हैं और उसका सब कुछ हरण कर लेते हैं। इस प्रकार देखा गया है महान महान विपत्तियों में बड़े बड़े नास्तिक लोग भी भयभीत होकर भगवान को पुकारने लगते हैं, क्योंकि अंतिम स्थिति यही है कि भगवान एकमात्र ही शरण रक्षण, वही एकमात्र ही रक्षा करते हैं। इसलिए उत्तरा देवी कह रही है कि हे प्रभु आपके अतिरिक्त इस संसार में कहीं भी मैं अभय का दर्शन नहीं कर पा रहा, मैं देख रहे हूँ कि सारे लोग भयभीत है, मृत्यु से भयभीत है। यदि सब व्यक्ति हर व्यक्ति मृत्यु से भयभीत है तो मुझे कौन मृत्यु से बचा सकता है। कभी कभी हम परिवार में रहते हुए यही सोचते हैं कि हमारे परिवार में पिता माता है, भाई बंधु कुटुंब है, ये लोग हमारी रक्षा करेंगे, किंतु हम भूल जाते हैं कि हमारे परिवार के सारे लोग ये भी मृत्यु के अधीन है, कोई मृत्यु से बच नहीं सकता, इसलिए कोई हमें मृत्यु से बचा नहीं सकता, एकमात्र भगवान ही बचा सकते। तो यहाँ प्रश्न उठता है क्या भक्तों की मृत्यु नहीं होती है, जो भगवान की शरण में जाते हैं क्या उनकी मृत्यु नहीं होती है, उनकी भी मृत्यु होती है, किंतु जो भक्त नहीं है अभक्त है उनकी मृत्यु और भक्त की मृत्यु में अंतर है। क्या अंतर है, जब अभक्त की मृत्यु होती है उस समय अभक्त को लेने के लिए यमदूत आते हैं, यमराज के पास उसका विचार होता है, पापों का विचार होता है, उसको दंड दिया जाता है। वो बार बार इस भौतिक संसार में जन्म ग्रहण करता है कष्ट भोग करने के लिए। यहाँ कोई सुख भोग करने के लिए नहीं आता। ये भौतिक संसार ये दुखावय विश्वास ये दुख का घर है, अनित्य है, ये जेल के सदृश। और जेल में कोई सुख पाने के लिए नहीं जाता। उसी प्रकार इस भौतिक संसार में कोई सुख पाने के लिए नहीं आता, एक दुख का घर है। अतः यहाँ पर उत्तरा देवी कह रहे हैं कि हे प्रभु, इस संसार में आप ही एकमात्र रक्षा करता है। ये भौतिक संसार में जो भक्त होता है उसकी जब मृत्यु होती है तो उसके पास यमदूत नहीं आते, उसके पास विष्णु दूत आते हैं, भगवान के दूत आते हैं। और किस लिए आते हैं? उस भक्त को विमान में भगवान के धाम ले जाने के। इसलिए भक्त की मृत्यु में कोई भय नहीं है, आनंद। भक्त इस शरीर को त्याग करके दिव्य शरीर भगवान जैसा शरीर ग्रहण करके भगवान के धाम को प्राप्त होता है, उसके लिए ये आनंद का विषय है। किंतु जो अभक्त है उसके लिए ये दुख कष्ट का विषय है, भयंकर है। यही अंतर है भक्त और अभक्त। जिस समय ध्रुव महाराज जो कि भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, उनका अंतिम समय आकर उपस्थित हुआ, तो उस समय बैकुंठ से विष्णुदूत स्वर्ण के विमान लेकर आए ध्रुव महाराज को लेने के लिए। और ध्रुव महाराज ने अपना शरीर भी त्यागा नहीं, वो अपने स्व शरीर उसी शरीर में वो भगवत धाम गए, उसी शरीर में वो विमान का आरोहण उन्होंने किया और उसी शरीर दिव्य शरीर में परिवर्तित हो गया। तो इसी प्रकार भक्त लोग भगवत धाम जाते हैं जब मृत्यु को प्राप्त करते हैं, इसलिए मृत्यु उनके लिए भयंकर नहीं। तो उत्तरा देवी भगवान कृष्ण से कह रही है कि आपके अतिरिक्त इस संसार में मैं कहीं भी अभय का दर्शन नहीं कर सकता। सब लोग मृत्यु से भयभीत हैं और आप एकमात्र ही मुझे बचा सकते हैं। तो जब इस प्रकार उत्तरा देवी ने प्रार्थना की भगवान कृष्ण से, तो भगवान कृष्ण ने देखा कि अपने भक्तों पर महान विपत्ति आकर उपस्थित हुई। और भगवान का एक दूसरा नाम है भक्त वत्सल। भगवान को भक्त वत्सल कहा जाता है, अर्थात भक्त जिनके प्रिय, अत्यंत प्रिय। जिस प्रकार भक्तों को भगवान प्रिय है, उसी प्रकार भगवान को उनके भक्त भी अत्यंत प्रिय है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण घोषणा करते हैं, अर्जुन प्रतिदानी न मे भक्ता प्रणश्य। अर्जुन, तुम दृढ़तापूर्वक घोषणा कर दो कि मेरे भक्त में कभी विनाश नहीं होता। जब जब भक्त लोग किसी विपत्ति का सम्मुखीन होते हैं, तो उस समय भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि पांडव गणों के जीवन में कितनी सारी विपत्तियां हैं और भगवान कृष्ण ने उनको कैसे कैसे बचाया। तो उत्तरा देवी और एक उदाहरण है पांडव वंश। तो जब उसने भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान श्री कृष्ण तुरंत उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उत्तरा के गर्भ की रक्षा उन्होंने, जो परीक्षित महाराज माता उत्तरा के गर्भ में उस समय उपस्थित थे, उनका जन्म नहीं हुआ था। और अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र उनको दग्धीभूत कर चुका था। इस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके अपनी गदा को घुमाते हुए उस ब्रह्मास्त्र के तेज को उन्होंने निस्तेज कर दिया ब्रह्मास्त्र। और परीक्षित महाराज का शरीर जो दग्धीभूत हो चुका था, जल चुका था, उस जले हुए शरीर को उन्होंने नूतन शरीर दिया। यही भगवान की योग शक्ति, इसलिए भगवान को महायोगेश्वर कहा गया। तो जब इस प्रकार भगवान परीक्षित महाराज की रक्षा कर रहे थे गर्भ, उस समय परीक्षित महाराज ने भगवान का दर्शन किया। ये परीक्षित महाराज का बहुत बड़ा सौभाग्य था। जिस व्यक्ति का जन्म अभी संसार में नहीं हुआ है, मातृ गर्भ में जो भगवान का दर्शन कर रहा है, उससे बढ़कर सौभाग्यशाली संसार में कौन हो सकता है। तो वही परीक्षित महाराज जो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त महाभागवत भक्त, तो उन्होंने जब भगवान को देखा तो उन्होंने किस प्रकार देखा भगवान, अंगुष्ठ मात्रं अमलम। तो भगवान श्री कृष्ण उस समय बहुत बड़े नहीं थे, अंगुष्ठ मात्र, ये अंगूठे के समान बड़े थे, अर्थात उनका रूप बहुत छोटा था और उसी अवस्था में वो गर्भ में थे। परीक्षित महाराज की रक्षा कर रहे हैं, अंगुष्ठ मात्रं अमलम, किंतु ये छोटे अंगुष्ठ मात्र होने पर भी वो अमलम, उनका शरीर दिव्य, हमारे जैसा भौतिक शरीर भगवान का नहीं था, रक्त मांस का शरीर भगवान का नहीं था, भगवान का शरीर दिव्य शरीर होता है, ये रक्त मांस का शरीर नहीं होता। और भगवान क्या पहने हुए थे, मैं पुरट मालिन, अंगुष्ठ मात्रं अमलम, सुरत पुरट मालिन। तो भगवान श्री कृष्ण अपने मस्तक में सोने के मुकुट लगाए गए, अर्थात सोने का मुकुट उनके मस्तक पर शोभायमान हो रहा, एवं उनका जो रूप था वो कैसा था, अपित्य दर्शनंग श्याम, उनका रूप था श्याम रूप और अत्यंत मनोहर लग रहा है भगवान का ये रूप श्याम रूप। और उसके साथ साथ तड़ित बाष्पम अच्युतम, उनका वस्त्र कैसा था, तड़ित बाष्प, ये बिजली के रंग के समान पीला, इस प्रकार भगवान वहां पर प्रकट हुए थे परीक्षित महाराज की रक्षा करने के लिए। और ये किस रूप में प्रकट हुए थे, श्रीमद दीर्घ चतुर्वाह, उनके चार भुजाएं और चार भुजाओं में ये शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे। और इस प्रकार भगवान परीक्षित महाराज को दर्शन दे रहे हैं। तो परीक्षित महाराज ने जब भगवान को इस प्रकार देखा तो वही रूप उनके मन में बैठ गए, क्योंकि यही प्रथम दर्शन था। जब व्यक्ति का जन्म होता है, शिशु का जन्म होता है संसार में, वो संसार को देखता है, संसार के व्यक्तियों को, जीवों को देखता है, किंतु ये परीक्षित महाराज सर्वप्रथम उन्होंने भगवान को देखा था जन्म होने से पहले, और वही रूप उनके मन में बैठ गए। और जब उनका जन्म हुआ परीक्षित महाराज का, तो जन्म होने के उपरांत उन्होंने इस संसार में जब सारे जीवों को, सारे व्यक्तियों को देखा, तो उनमें उस भगवान के रूप को देखने का प्रयत्न किया। इसलिए कहा जाता है कि परीक्षित महाराज सबकी परीक्षा करते थे कि जिस रूप का दर्शन मैंने गर्भ में किया था, माता के गर्भ में, वो व्यक्ति तो ये नहीं है। तो इस प्रकार सबकी परीक्षा लेते लेते, परीक्षा लेने के कारण उनका नाम परीक्षित पड़ा, परीक्षित इति जा परीक्षित। तो सबकी परीक्षा ले रहे थे परीक्षित महाराज, इस प्रकार वो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हुए परीक्षित महाराज। और बाल्यकाल में जिस प्रकार बच्चे खिलौने लेकर खेलते हैं, परीक्षित महाराज का खिलौना भगवान कृष्ण की मूर्ति थी, भगवान कृष्ण की मूर्ति के साथ भगवान परीक्षित महाराज खेलते थे। और किस प्रकार खेलते थे, तो भगवान कृष्ण की मूर्ति को सजाना, श्रृंगार करना, उनको तरह तरह के वस्त्र पहनाना, अलंकार पहनाना, ये भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान को अलंकार बहुत प्रिय है, जिस प्रकार शिवजी को जलधारा प्रिय है, जलधारा प्रिय शिव, जिस प्रकार शिवजी को जलधारा प्रिय है, उसी प्रकार नमस्कार प्रिय भगवान, सूर्य को नमस्कार प्रिय, इसलिए सूर्य नमस्कार किया जाता है, शिवजी को जलधारा दी जाती है, अलंकार प्रिय विष्णु, और भगवान विष्णु अलंकार प्रिय, उनको प्रेम पूर्वक भक्त लोग इसलिए श्रृंगार करते हैं भगवान। और उस भगवान के रूप का दर्शन मात्र से मन इस संसार के और किसी रूप का दर्शन करना नहीं चाहता। तो इस प्रकार भगवान को अलंकार प्रिय और परीक्षित महाराज भगवान को इस प्रकार सजा देते बचपन बाल्यावस्था। अलंकार प्रिय विष्णु ब्राह्मण भोजन प्रिय और ब्राह्मण के भोजन प्रिय अर्थात ब्राह्मण लोग भोजन से ही संतुष्ट होते हैं, इसलिए हर धार्मिक अनुष्ठान में ब्राह्मण वैष्णव को भोजन देने की व्यवस्था है, क्योंकि भगवान ब्राह्मण वैष्णव के मुख से अग्नि के मुख से खाते हैं, इसलिए ये ब्राह्मणों को भोजन देकर संतुष्ट किया जाता है और भोजन के साथ दक्षिणा भी देना चाहिए, बिना दक्षिणा के ये दान संपूर्ण नहीं होता। जो भी हो तो परीक्षित महाराज भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को सजा दे और इस प्रकार यही उनका खेल था बाल्यावस्था का खेल। और वही परीक्षित महाराज जब बड़े हुए और भगवान श्री कृष्ण इस संसार से अंतरित हो गए, भगवान श्री कृष्ण चले जाने के पश्चात पांडवगण इस संसार में रहना और उचित नहीं समझे, ये लोग सोचते हैं कि अब जब भगवान कृष्ण संसार को तो छोड़कर चले गए हैं तो हम लोगों को जीवित रहने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण के अतिरिक्त ये पांडवगण और किसी को नहीं समझते, ये कृष्ण गत प्राण थे पांडवगण। अतः पांडवगण परीक्षित महाराज को राजगद्दी में अभिषिक्त करते हुए वन की ओर प्रस्थान करते हैं। तो परीक्षित महाराज संसार के राजा सम्राट समस्त पृथ्वी के अधीश्वर हुए महाराज परीक्षित। उस समय जो भारतवर्ष कहा जाता था वो भारतवर्ष आजकल के भारत में सीमित नहीं था, आजकल भारत भूखंड बहुत सीमित हो गया, किंतु उस समय भारतवर्ष के सम्राट कहने का अर्थ था कि समग्र विश्व का सम्राट, भारतवर्ष का जो सम्राट था वो समग्र विश्व का अधीश्वर था, इसलिए ये वैदिक संस्कृति समग्र विश्व में परिव्याप्त है। आजकल विदेशों में भी देखा जाता है कहीं कहीं मिट्टी से ये विष्णु का मंदिर, शिव जी का मंदिर, विष्णु की मूर्ति, शिव जी की मूर्ति, ये सब निकल और ये सब जो समाचार है इसको दबा दिया जाता है, क्योंकि विदेशी लोग नहीं चाहते हैं ये स्वीकार करने के लिए कि ये वैदिक संस्कृति कभी उनके देश में भी व्याप्त है। जो भी हो ये वैदिक संस्कृति सारे विश्व में परिव्याप्त है, इसलिए इस भारतवर्ष का जो सम्राट था वो विश्व का सम्राट था। तो परीक्षित महाराज ये समग्र विश्व के अधीश्वर हुए और उनके शासन काल में कोई पापाचार नहीं होता था, यद्यपि कली भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान के पश्चात प्रवेश करना चाह रहा था इस संसार में, क्योंकि जब तक भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे कली अपना प्रभाव विस्तार नहीं कर पा रहा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चले जाने के पश्चात ही ये कलियुग का प्रारंभ हुआ। तो भगवान कृष्ण चले जाने के पश्चात कली इस संसार में प्रवेश करना चाहता था, अपना प्रभाव विस्तार करना चाह रहा था, किंतु उस समय महाराज परीक्षित संसार के सम्राट और उनके राज्य में कोई पापाचार नहीं हो रहा, ये इतने दृढ़ शासक थे, उनके राज्य में सारी प्रजा भगवान की भक्ति थी, हर प्रजा एकादशी व्रत करती थी, एकादशी व्रत के पहले दिन ये घोषणा कर दी जाती थी कल एकादशी व्रत है, तो सब लोग एकादशी का व्रत रखते थे, जैसे महीने में दो बार एकादशी आती है तो एकादशी का व्रत सबको रखना चाहिए, ये अत्यंत आवश्यक भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए दोनों। तो परीक्षित महाराज के राज्य में इस प्रकार लोग कृष्ण भक्तिमय जीवन यापन कर रहे और यही राजा का कर्तव्य भी होता है, जो इस राज्य का राजा हो तो उसका कर्तव्य है वो देखें कि उसके राज्य में प्रजागण शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन धारण कर रहे हैं या नहीं, और राजा का कर्तव्य है वो भगवान के आदेशों के अनुसार राज्य शासन करना, धर्म के अनुसार राज्य शासन करना, ये राजा का कर्तव्य है। यदि राजा स्वयं धर्म क्या है नहीं जानता है, अपने को धर्म निरपेक्ष मानता है, तो राजा भगवत नहीं है। राजा को धर्म क्या है जानना आवश्यक है, और धर्म को जानने के उपरांत वो सभी को धर्म मार्ग में प्रवृत्त करना भी राजा का कर्तव्य होता है। जिस प्रकार शास्त्र में बताया गया है कि केवल राजा नहीं, यहां तक कि घर में जो घर का मुख्य होता है, जो गुरु होता है, जो पति होता है, जो बंधु होता है, ये सब इनका सब कर्तव्य यही होता है। पिता न सुस्तात जननी न सुस्तात, गुरु न सुस्तात स्वजन न सुस्तात, जहां लोग नाम होते एक हजार समुपेत मृत्यु। जो व्यक्ति मृत्यु के भय से उसके अधीन रहने वाले की रक्षा नहीं कर सकता, वो ना तो गुरु होने योग्य है, ना पिता होने योग्य है, ना माता होने योग्य है, या संबंधी होने योग्य है। तो इसलिए गुरु पिता माता इनका कर्तव्य होता है कि गुरु का कर्तव्य शिष्य के प्रति, पिता माता का कर्तव्य अपने बच्चों के प्रति, पति का कर्तव्य अपनी पत्नी के प्रति कि उनको मृत्यु के भय से रक्षा करें, अर्थात मृत्यु के भय से बचने के लिए उनको मार्ग प्रदर्शन करना, ये उनका कर्तव्य होता है। और यदि कोई पति पिता माता अपने कर्तव्य का संपादन नहीं करते, तो उसके अभाव में, धर्म के अभाव में उनके अनुगत जन यदि पापाचरण करते हैं, उन पापों का एक सत्संग पिता माता या गुरु ग्रहण करता है। उसी प्रकार राज्य में प्रजागण यदि पापाचरण करते हैं, तो उनके पापों का एक सत्संग राजा को ग्रहण करना पड़ता है, क्योंकि राजा ने अपने कर्तव्य का संपादन नहीं किया, पिता माता ने अपने कर्तव्य का संपादन नहीं किया, गुरु ने अपने कर्तव्य का संपादन नहीं किया। ये शास्त्रों का निर्देश है। तो महाराज परीक्षित इस प्रकार राज्य शासन करते थे कि उनके राज्य में कली प्रवेश करने के लिए चाहने पर भी प्रवेश नहीं कर पा रहा। तो एक दिन कली ने प्रयत्न किया महाराज परीक्षित के राज्य में प्रवेश करने के लिए, और उसने पहले क्या किया, एक वृषभ पर उन्होंने प्रहार किया। कली ने एक राजा का वेश पहना, राजा का पोशाक परिधान करते हुए एक गाभी और वृष वहां पर खड़े थे, तो वृष के तीन पैर टूट चुके थे, एक पैर पर खड़ा था, उस पैर पर वो प्रहार कर रहा। और उसी समय महाराज परीक्षित इस दिग्विजय पर निकले, अपने रथ पर वो भ्रमण कर रहे थे, और उस प्रकार भ्रमण करते समय जब उन्होंने ये दृश्य देखा, तो महाराज परीक्षित बहुत आश्चर्यचकित हुए कि उनके राज्य में ऐसा कौन व्यक्ति है जो उनके राज्य में गौओं पर अत्याचार कर सकता है, क्योंकि गौ ब्राह्मणों की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, और भगवान की प्रतिनिधि होने के कारण राजा का कर्तव्य होता है गौ ब्राह्मणों की रक्षा करना, गौ ब्राह्मणों की रक्षा से वैदिक संस्कृति की रक्षा होती है। तो महाराज परीक्षित आश्चर्यचकित हो गए इस प्रकार के दृश्य को देखते, और वस्तुतः यही कली का प्रथम प्रभाव गोवंश पर आक्रमण। इसलिए आजकल देखा जाता है कि ये गो हत्याएं हो रही है, रोज लाखों की संख्या में गौएं कटती। भारत भूमि में जो वैदिक सभ्यता का मूल स्थान है, विदेशों में तो कटती है, भारत भूमि में ये गो हत्याएं हो रही है, ये सब कली का परिणाम है, और इससे लोगों को कष्ट भोग करना पड़ रहा है, तरह तरह के कष्ट, जैसे भूकंप है, सुनामी है, बाढ़ है, तो इस प्रकार अतिवृष्टि अनावृष्टि ये सब दैवी दंड को इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि लोग पापाचार में रहते हैं, तो महाराज परीक्षित ने देखा कि एक शूद्र व्यक्ति राजा का पोशाक पहनते हुए इस प्रकार गोकुल पर अत्याचार कर रहा है, गोवंश पर अत्याचार कर रहा है। तो महाराज परीक्षित तुरंत रथ से उतरे और अपने अपने तलवार को उन्होंने निकाल लिया, उस पर आक्रमण करने के लिए, उसको दंड देने के लिए। तो कली ने जब देखा कि महाराज परीक्षित इस प्रकार अपने अस्त्र लेकर खड़े हैं उसके सामने उसको दंड देने के लिए, तो कली महाराज परीक्षित के प्रताप या प्रभाव को जानता था कि महाराज परीक्षित कितने शक्तिशाली राजा, तो वो बहुत भयभीत हो गया कली। अब तुरंत उन्होंने राजप्रसाद को त्याग दिया और महाराज परीक्षित के चरण में उन्होंने शरण ग्रहण किया। तो कली बहुत चालाक था और जानता था कि महाराज परीक्षित के शरण में जाने से तो उसका वध नहीं करेगा। ये क्षत्रियों का एक धर्म होता है, क्षत्रिय की शरण में जो कोई आता है क्षत्रिय अवश्य उसको शरण प्रदान करता है, उसके जीवन की रक्षा करता है, उसको मृत्युदंड नहीं दे सकता। तो महाराज परीक्षित क्षत्रिय होने के कारण उन्होंने देखा जब कली उनकी शरण में आया है उसका तो वध वह नहीं कर सके, किंतु उन्होंने कहा कि कली तुम पाप पुरुष हो इसलिए तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते, तुम मेरे राज्य के बाहर चले जाओ। तो जब महाराज परीक्षित ने इस प्रकार का आदेश दिया तो कली ने कहा कि महाराज आप मुझे आदेश दे रहे हैं आपके राज्य से बाहर चले जाने के लिए, किंतु मैं कहीं भी जाता हूँ वहां देखता हूँ कि आपका राज्य है, वो राज्य आपके अधीन है, अर्थात ये सारे संसार में आपका ही राज्य है, तो मैं कहाँ रहूँ, इस विश्व के बाहर तो कहीं नहीं जा सकता ना, तो आपका ही आप सारे संसार के सारे विश्व के आप अधीश्वर हैं, तो आप किस राज्य से बाहर हमें कहाँ जा सकता, इसलिए मेरा अनुरोध है कि जिस प्रकार आपके राज्य में इतनी सारी प्रजाएं रह रही है मैं भी आपका एक प्रजा, आप मेरे लिए कुछ स्थान निश्चित कर दीजिए जहां पर मैं अवस्थान करूं। तो परीक्षित महाराज ने सोचा ये कली जो कह रहा है कि वो उनकी प्रजा है और स्थान मांग रहा है, तो परीक्षित महाराज ने कहा कि ठीक है तुम्हें हम चार स्थान प्रदान करते हैं, क्योंकि महाराज परीक्षित जानते थे ये चार स्थान उनके राज्य में नहीं थे। तो अभ्यर्थी तो पदार्थ में स्थाना नहीं कलये, तो महाराज परीक्षित कली के द्वारा इस प्रकार अभ्यर्थित होकर चार स्थान कली को प्रदान किए। द्वित कानन त्रिय सुन जत्र अधर्म करवे, ये चार स्थान प्रदान किए महाराज परीक्षित जहां द्वित क्रीड़ा हो रही है, अर्थात लोग जुआ खेलते हैं, जहां जुआ खेल होता है वहां मिथ्या का वास होता है, लोग झूठ बोलते हैं, ये स्वाभाविक। तो द्वितम जहां द्वित क्रीड़ा होती है तो वहां उस स्थान को महाराज परीक्षित ने कली को प्रदान कि कली वहां बात कर सकता है, और द्वितम पानम अर्थात जहां मद्यपान होता है या मादक द्रव्यों का सेवन होता है तो वहां भी कली बात करता है, वहां पापाचरण होता है। तो महाराज परीक्षित ने ये भी एक स्थान प्रदान किया जहां मादक द्रव्यों का सेवन होता है, और मादक द्रव्यों में ये सारी चीजें आती है, चाय बीड़ी सिगरेट गंजा भांग अफीम शराब कई तरह के मादक द्रव्य, और ये जो लोग मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं उनके लिए एक नर्क भी है जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है।